अब हम देखें कि मांझने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य श्री हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक नई बहू आई तो सासू ने कहा कि सुनो वो दही जमाना है और बर्तन मांझ करके और उसमें जमा देना तुम दूध। उसने कहा ठीक जमा देंगे, और जमा दिया उसने। दूसरे दिन देखा बर्तन में तो दही तो जमा नहीं था, वो फट गया था। अच्छा, जमने और फटने का फर्क तो सब जानते हैं जो लोग जमाते हैं। जो फट जाता है उसमें से घी नहीं निकलता, और जो जमता है उसमें से घी निकलता, इतना ही फर्क है और क्या, मोटा मोटा फर्क, बाकी दिखते दोनों एक से। हाँ, तो वो फट गया। सासू ने कहा ये तुमने कैसे, क्या किया था, बर्तन मांजा था? कहने हाँ मांजा था, देख लो आप कितना चमक रहा है बर्तन, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत देर तक, आप तो बहुत थोड़ी देर तक मांजती, हमने तो बहुत देर तक मांजा था। तब ठीक है, और बहू तुमने भीतर हाथ डाल के मांजा था कि नहीं? अरे भीतर भीतर क्या, बाहर होना चाहिए। तो बाहर बाहर बढ़िया चमकदार बर्तन बना दिया, बाहर बिल्कुल मांज मूंज करके अच्छे शुद्ध कपड़े पहन के आ गए, पीले रंग के तो पीले रंग के, सफेद रंग के तो सफेद रंग के, बाहर से तिलक विलक भी लगा हुआ है फर्स्ट क्लास, एकदम ऐसे लग रहे हैं कि इनसे ज्यादा पवित्र आत्मा कोई नहीं है, भव्य आत्मा कोई भी नहीं है। लेकिन भीतर भी हाथ डालना पड़ेगा। हाँ, ये भीतर हाथ डाल के मांजने की प्रक्रिया है। आधा काम तो अपन ने कर लिया, इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही बाहर मांज लिया हमने, बिल्कुल धो पहुंच के नहा करके आए हैं अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन ये आधा मांजना है। अब पूरा मांजने के लिए तो यहां बैठे बैठे भीतर हाथ डाल के, अब हमें तो कई बार लगता कि ऐसा होता कहीं से कोई एक आध खिड़की विड़की इसमें बना देते वो, तो अपन ऐसे पहुंच लेते भीतर, क्या क्या गंदगी भर गई, कैसे कैसे खराब खराब विचार भर गए। लेकिन कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि भगवान के गुणगान करने से उतनी देर के लिए मेरी विकृतियां मेरे मन से हट जाती हैं। इससे आसान और कोई प्रक्रिया नहीं। देखो गुणगान कर रहे हैं दूसरे के और चित्त हो रहा निर्मल अपना, इससे आसान प्रक्रिया हो सकती क्या? ये पूजा ऐसी ही मांझने की प्रक्रिया है, करेंगे हम इसमें भगवान के गुणगान और मंझदा जाएगा भीतर से हमारा चित्त। और तीसरा अर्थ है पू धातु का फटकना। वेनोइंग फेन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सूपा, सूपा। तो सूपे में क्या काम करते हैं अम्मा लोग, धान कूट करके सूपे में, और छिलका छिलका बाहर और चावल चावल अपनी तरफ, ये फटकना कहलाता है। यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे पूजा के दौरान। पूजा का अर्थ ही है फटकना, सार भूत को अपनी तरफ रखते जाना और असार असार को बाहर फेंकते जाना। देखो तो जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है, आठ ही द्रव्य हैं जिनको कि सब सारभूत मानते हैं, जिसमें खाने पीने की सब सामग्री आ गई, जल चंदन अक्षत सब बताएंगे अपन बाद में, चर्चा करेंगे कितनी सामग्री और कैसी सामग्री। ये आठों चीजें अत्यंत मूलवान हैं, संसार इनको सारभूत मानता है, संसार का काम इन्हीं से चलता है। लेकिन यहां हम भगवान के सामने उसे निस्सार मान के फेंकते जा रहे हैं। और सारभूत क्या है? सारभूत तो मेरी अपनी आत्मा की निर्मलता ही है। मैं निरंतर उसी को प्राप्त करूं और इस सब को छोड़ता हूं, मेरे लोभ को छोड़ता हूं, क्योंकि लोभ मेरे मन को मलिन करता है। मैं इन सब चीजों का त्याग करके अपने लोभ को कम कर रहा हूं, यानी अपने मन को निर्मल कर रहा हूं, अपनी मलिनताओं का विसर्जन कर रहा हूं। उन क्षणों में हमें ये लगना चाहिए कि ये संसार की चीजें सारभूत नहीं है, ये जो भगवान के गुणगान है और जो चित्त की निर्मलता है वही सारभूत है। पू धातु यानी पूजा का अर्थ इन तीन तरह से, एक तो पवित्र होना, अपनी बाहर भीतर की मलिनताओं को धोना, बाहर और भीतर से अपने को मांझना और शुद्ध करना, और इतना ही नहीं जो सारभूत है उसे ग्रहण करते जाना और जो निस्सार है उसे बाहर फेंकते चले जाना। पूजा के मायने इतना है।